क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं, क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे मध्य में श्री यंतुदेव बुधु जी आए हुए हैं, और आज का हमारा विषय है हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी प्रचारी सभा द्वारा आयोजित हिंदी दिवस का योगदान। श्री यंतुदेव बुधु जी के बारे में दो शब्द। आप बहुत दिनों से हिंदी के पठन पाठन और शिक्षण से जुड़े हुए हैं। आप साल 1976 में हिंदी शिक्षक बने, फिर साल 2013 में आप उप मुख्य अध्यापक नियुक्त हुए। इसके पश्चात आप टेक्स्ट बुक राइटिंग पैनल में सम्मिलित हुए, और इस साल अप्रैल महीने से आपकी नियुक्ति सरकारी स्कूल में इंस्पेक्टर के रूप में हुई है। अब तक आपकी दो रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है, जो बाल कहानी संग्रह है। शिव यंतुदेव बुधु जी, नमस्कार।
नमस्कार।
आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि मॉरिशस में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जितनी प्रगति हुई है, का जितना विकास भी हुआ है, उसमें कई संस्थाओं का योगदान रहा है। इसमें निश्चित रूप से हिंदी प्रचारी सभा का नाम सम्मिलित है। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं?
जी देखिए, हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। तब से आज तक हिंदी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में कार्यरत है, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम हुआ है मॉरिशस में। पूरे मॉरिशस के लोग हिंदी प्रचारिणी सभा को जानते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं, और फिर जितने विद्वान हैं मॉरिशस में आज, सभी का किसी न किसी रूप में हिंदी प्रचारिणी सभा से संबंध रहा है।
आप थोड़ा सा उसकी स्थापना के बारे में बता रहे हैं, कुछ संस्थापकों के नाम आप जानते होंगे?
जी देखिए, स्थापना 1926 में हुई तिलक विद्यालय नाम से।
अच्छा।
बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय सेनानी थे, उनसे प्रेरित होकर हमारे पूर्वजों ने वो संस्था का नाम तिलक विद्यालय रखा था। बाद में 1935 में हिंदी प्रचारिणी सभा नाम दिया गया, और उसमें जितने लोग कार्यरत थे, जो दाता थे, प्रमुख दाता श्री रामदास रामलखन हुए, रामलाल भगत, रामेश्वर ओरी, श्री राम देवीदीन आदि लोग, और फिर सूरज प्रसाद मंगर भगत भी हुए, जिन्होंने काफ़ी कुछ किया हिंदी प्रचारिणी सभा के लिए। उनमें हैं बोलोराम मुक्ताराम चटर्जी, राम रतन, रामलाल मंगर, महावीर फागु, अनेक लोगों के नाम हैं इसमें।
ये लोग संस्थापक रहे?
जी जी।
तो आप कृपया मुझे बताइए कि इसका उद्देश्य क्या था उस वक्त जब इसकी स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य था उसका?
अच्छा देखिए, उस समय मॉरिशस परतंत्र देश था
जी,
और फिर गोरों का राज्य था, और फिर आपको तो पता है कि धर्म परिवर्तन की बात भी चलती थी उस ज़माने में
जी।
तो हिंदी भाषा के प्रचार, हिंदी भाषा के साथ साहित्य और हिंदी भाषा के साथ धर्म के प्रचार के लिए उसकी स्थापना हुई, ताकि लोग हिंदी पढ़ें और धर्म संस्कृति से जुड़े।
तो उस समय सरकारी पाठशाला में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी मेरे ख्याल से?
जी जी, तो शुरू में तो बैठकाओं में पढ़ाई होती थी
जी।
और शाम के वक्त, रात के वक्त, शुरुआत में पेड़ के नीचे, फिर झोंपड़ी में, बैठकाओं में हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई। तब से आज तक हिंदी विकास कर रही है।
तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हिंदी प्रचारी सभा की ओर से बहुत सी परीक्षाएं होती है, इन सब का आयोजन हिंदी प्रचारी सभा की ओर से होता है। तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से हिंदी प्रचारणी सभा परीक्षाओं का आयोजन करती है।
जी जी,
थोड़ा सा इस पर हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
अच्छा, देखिए यह बहुत ही सुंदर, मैं बोलूँगा कहानी के रूप में है।
जी,
जब जय नारायण रॉय जी भारत से पढ़कर आए इलाहाबाद से,
जी,
तब उन्होंने यह विचार रखा कि हिंदी प्रचारणी सभा की ओर से हिंदी की परीक्षा हो, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से। तभी से यह परिचय की परीक्षा शुरू हुई और 1946 में ये परिचय की परीक्षा होने लगी, और उसके बाद प्रथमा 1956 में, मध्यमा 63 में और उत्तमा 1965 में। तब से आज तक ये सब परीक्षाएं चल रही हैं, इनका आयोजन होता रहा है और काफ़ी छात्र इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं।
ये तो एक बहुत लंबी यात्रा हुई।
बहुत लंबी यात्रा है। हाँ,
तो इस यात्रा में कुछ सफलताएं भी हुई, कुछ क्या ऐसा हुआ कि कुछ असफलता भी हुई इसमें बीच में? नहीं,
देखिए संख्या के रूप में संख्या कम हुई है
जी,
लेकिन फिर भी पढ़ाई हो रही है, बच्चे भाग ले रहे हैं।
आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक समय में जितने भी लोग हिंदी अध्यापक बने थे वे हिंदी प्रचारी सभा द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं की बदौलत ही हिंदी अध्यापक बने थे?
जी जी जी, देखिए उस समय पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई और हिंदी की परीक्षा, बस केवल यही संस्था थी जो ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करती थी, परिचय से उत्तमा तक। और इन्हीं परीक्षाओं के प्रमाण के साथ मॉरिशस में हिंदी अध्यापकों की भर्ती हुई। अभी भी मैं बोलूँगा जितने लोग परीक्षाएं दे चुके हैं, जितने लोग विद्वान हैं, जितने हिंदी के साहित्यकार हैं, जितने हिंदी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो या माध्यमिक में हो, सभी का किसी न किसी रूप से हिंदी प्रचारणी सभा की परीक्षाओं से संबंध रहा है। और इन परीक्षाओं के जरिए ही, इन्हीं प्रमाणों के जरिए ही उनको आजीविका भी मिली है।
मैं आपको बताऊं कि मैं स्वयं इसका उत्पादन हूं।
जी जी जी,
हम हिंदी अध्यापक अगर बने तो हिंदी प्रचारणी सभा की बदौलत हमने परीक्षा दी और अन्यों की तरह सफल हुए, और आज हिंदी अध्यापक अगर बने हैं तो बस उसकी बदौलत।
जी जरूर जरूर,
जितनी सेवा आप लोग करते हैं वो मुझे नहीं पता मैं कैसे आप लोगों को धन्यवाद दूं कि किस रूप में आप समस्याओं का सामना करते हुए इस गाड़ी को आप आगे ले चल रहे हैं।
जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, देखिए सरकार की ओर से भी उत्तमा तृतीय खंड को मान्यता दी जाती है, और ये उत्तमा तीन जो है सरकार इसको डिप्लोमा इन हिंदी का दर्जा देती है।
अच्छा,
और फिर ये संस्था जो है 2004 में संसद में पारित एक विधेयक अनुसार यह एक औपचारिक संस्था है।
जी, और इसमें कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग हट जाते हैं, क्या ये सिलसिला चलता है?
जी देखिए, शुरू से अब तक कई समितियां आई और गईं
जी,
लेकिन सबका एक ही उद्देश्य रहा है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार।
जी,
और हिंदी प्रचारणी सभा का आदर्श वाक्य ही है, भाषा गई तो संस्कृति गई।, गई तो इसी उद्देश्य को लेकर, इसी को लक्ष्य मानकर हम अब तक कार्यरत हैं।
अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न इससे हटके, हिंदी प्रचारणी सभा बहुत दिनों से हिंदी दिवस का आयोजन करते आ रही है, इस पर थोड़ा सा हमें खुलासा दीजिए।
जी देखिए, पहली बार के लिए हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह 1963 में मनाया गया था।
63
में
जी,
तो उस समय हिंदी सप्ताह जब मनाया गया तो तुलसी जयंती के अवसर पर, मॉरिशस में तुलसी जयंती मनाते हैं
जी,
उसी अवसर पर ये हिंदी दिवस मनाया गया था। और इसका कारण यह है कि मॉरिशस में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में श्री रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
बेशक,
भले ही रामचरितमानस अवधी भाषा में है, लेकिन हिंदी का प्रचार अवधी से ही उसी रामचरितमानस से हुआ है। तो समझ लीजिए गोस्वामी तुलसीदास को एक श्रद्धांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उस समय यानी कि तुलसी जयंती के अवसर पर हिंदी प्रचारणी सभा हिंदी दिवस का आयोजन करती है। और उस समय से 63 से अब तक इसी अवसर पर हम मनाते आ रहे हैं, समझ लीजिए एक परंपरा सी बन चुकी है।
यह हर साल मनाया जाता है।
जी जी,
और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है?
देखिए, इस अवसर पर परिवर्तन तो नहीं, लेकिन इस अवसर पर विद्वानों को बुलाया जाता है और भाषण होते हैं, और इस अवसर पर छात्रों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिए जाते हैं। जो परीक्षा में प्रथम 10 में आते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, और फिर विद्वानों के भाषण होते हैं और रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहे गाए जाते हैं
जी।
और फिर इस तरह ये आयोजन हर वर्ष चलता है, होता है।
तो जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप लोग ये हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं, क्या ये लक्ष्य छात्रों तक पहुंचता है, ये संदेश छात्रों तक पहुंचता है?
जी देखिए, ये जो छात्र उपस्थित होते हैं, प्रमाण पत्र लेने आते हैं, और कई हिंदी के प्रेमी भी उपस्थित रहते हैं, और विद्वानों द्वारा जो भाषण होते हैं तो उन तक पहुंचता है, और छात्र इससे प्रेरित होते हैं, और मैं कहूँगा हिंदी भाषा को बढ़ावा भी मिलता है, भाषा को बढ़ावा मिलता है और हिंदी का प्रचार प्रसार भी होता है।
तो हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम है, आप बता रहे हैं कि ये हर साल होता है।
जी जी,
इस साल के लिए क्या रहा, इस साल के लिए हो गया या?
हाँ, अभी तुलसी जयंती के अवसर पर अभी हाल में 17 अगस्त को हिंदी प्रचारणी सभा भवन में बहुत भव्य रूप से मनाया गया, और इसमें कई विद्वान आए, ये डिप्टी हाई कमिश्नर आए थे
भारत से।
हाँ, और फिर कई हिंदी के विद्वान उपस्थित रहे, विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र भी रहे, और कई ऐसे विद्वान रहे जो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और छात्रों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ सुनाते हैं।
तो हिंदी दिवस के संदर्भ में कुछ पत्रिकाएं या फिर कुछ विशेषांक निकाली जाती है?
हाँ, देखिए हिंदी प्रचारणी सभा की ओर से एक पत्रिका निकलती है पंकज
जी,
और विशेषांक तो हर अवसर पर निकालते हैं, जैसे अभी पिछले साल विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में।
हाँ जी,
तो उस अवसर पर एक विशेषांक निकाला गया था, और इस तरह से कई बार विशेषांक निकाला गया है, और हिंदी दिवस के अवसर पर जब पत्रिकाएं निकलती हैं तो उसका लोकार्पण भी वहाँ होता है।
कोई संदेश आप छात्रों को देना चाहेंगे जो हिंदी प्रचारणी सभा की ओर आते तो हैं, शायद उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, कुछ सम्मिलित होने का उसको नहीं मिलता है, कुछ कोई संदेश आप देना चाहेंगे?
संदेश तो यही है, देखिए हिंदी प्रचारणी सभा की वेबसाइट है
जी,
hindiprachariniSabha.com, उसमें काफ़ी सामग्री है
जी,
सभा के बारे में जानकारी है,
परीक्षा
के बारे में भी सूचनाएँ हैं, और फिर प्रश्न पत्र है, सिलेबस हैं, काफ़ी कुछ सूचनाएं मिलती हैं। तो जो छात्र नहीं आ सकते हमारे यहाँ, वेबसाइट के ज़रिए वे हमारे यहाँ हमारे तक पहुँच सकते हैं, और फिर ईमेल भी हैं
जी,
ईमेल से भी संपर्क रखते हैं छात्र, और इस तरह छात्र उससे फ़ायदा उठाते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि उसकी सभी जो जानकारी चाहिए उसको मिल जाती है।
हाँ, तो मेरा संदेश यही है कि छात्रगण, आप लोग पढ़िएगा,
जुड़े रहें इससे,
और इससे ज़रूर आपको लाभ होगा।
श्री यंतुदेव बुद्धू जी, हिंदी प्रचारी सभा के बारे में जितनी बातें भी कहेंगे वो कम ही होगी, क्योंकि एक लंबी यात्रा उसने तय की, और आज भी हिंदी के विकास में ये सभा लगी हुई है। बस अगर समय रहा तो फिर कभी आपके बुलाएंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे
जी।
तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आपने श्री यंतुदेव बुद्धू जी को सुना, जिन्होंने हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर देवव्रत श्रीरतन आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री यंतुदेव बुद्धू जी को भी धन्यवाद है, क्योंकि निरीक्षण कार्य को थोड़ा सा छोड़कर वे हमारे यहाँ पर आए हुए हैं MBC में, और विशेष धन्यवाद हमारे सहयोगी सुनील लक्ष्मण जी को भी जाता है, जिन्होंने तकनीकी मदद हमें दी। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
शितिज। एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।